आपने मुझे पहचान लिया नानी, अरुणिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। नानी ने भी अरुणिमा को गले लगा लिया था। इतने सालों बाद अरुणिमा को देखकर नानी के आंसू निकलने लगे थे और अरुणिमा भी रोने लगी थी। अस्पताल स्टाफ ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप लोग बैठकर बातें कीजिए। नानी अरुणिमा का हाथ पकड़कर अपने उस छोटे से कमरे में ले जाती है। अरुणिमा हैरानी से उस छोटे से कमरे को देखते रह जाती है। कुछ सामानों के साथ उसकी नानी इस कमरे में रहती है। नानी अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे खाट पर बैठाती है और प्यार से अरुणिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कैसी हो और मिश्री कैसी है? अरुणिमा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मिश्री भी ठीक है नानी, अभी उसकी 10वीं की पढ़ाई चल रही है ना, इसीलिए उसे अपने साथ नहीं लाई हूँ, पर अगली बार उसे अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगी। नानी ये सुनकर हाँ में सर हिलाती है, फिर अपने चश्मे को थोड़ा सा अपनी नज़र की ओर करीब करते हुए अरुणिमा को अच्छी तरह से देखने लगती है। उसका मांग भरा हुआ सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। वो हैरान होते हुए कहती है, अरु तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, अकेली आई हो, अपने पति को साथ नहीं लाई हो? अरुणिमा कहती है, नहीं नानी, वो काम में थोड़े बिजी थे इसीलिए नहीं आ पाए। वो सब छोड़िए नानी, मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने आई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं उस सच के बारे में जो मैं जानना चाहती हूँ? नानी हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहती है, क्या पूछना चाहती हो तुम, और तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो या कुछ पूछने आई हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम इतने सालों बाद अचानक आ गई हो और वो भी शादी के बाद, और मुझसे इस तरीके से सवाल पूछ रही हो। सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो नहीं हो ना? मिश्री ठीक तो नहीं है ना? अरुणिमा अपनी नानी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने माँ के बारे में क्यों नहीं पूछा? नानी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ठीक ही होगी, उसे क्या ही हो सकता है? अरुणिमा ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मेरी माँ को भी तो कुछ हो सकता है ना, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो बीमार हो सकती है, या फिर वो पागल हो सकती है। ये कहते हुए अरुणिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, लेकिन नानी ने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, वो औरत पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए बैठी है, वो कहाँ पागल होने वाली है, उसका बस चले तो अच्छे खासे इंसान को पागल कर दे। अरुणिमा को लगा यही सही वक्त है जब वो सच्चाई जान सकती है। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी नानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नानी आप मुझे सच बताइए, ये अभय कौन है और इसका मेरी माँ से क्या रिश्ता है? मुझे बताइए नानी, मुझे जानना है। अरुणिमा का सवाल सुनकर नानी का चेहरा सख्त हो जाता है और वो अरुणिमा के हाथ से अपना हाथ अलग करते हुए कहती है, अरु मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है, जाओ यहाँ से, और मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अरुणिमा अपनी नानी का हाथ पकड़ते हुए फिर से कहती है, नहीं नानी, आपके पास मेरे सारे सवालों के जवाब हैं, वरना दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपनी बेटी से नफरत करती हो। सिर्फ आप हैं जो अपनी बेटी से नफरत करती हैं, और माँ भी आपको कुछ खास पसंद नहीं करती है। मुझे आप दोनों का ये रिश्ता समझ में नहीं आता है, इसीलिए अब मुझे जानना है कि इस रिश्ते में खटास की वजह क्या है, क्यों आप और माँ दूसरे से इतना नाराज़ हैं, और कौन है ये अभय जिसका रिश्ता मेरी माँ के साथ है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी है? अरुणिमा इस समय अपनी नानी के साथ उनके आश्रम में बैठी हुई थी। कितने सालों बाद अरुणिमा को देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई, लेकिन अरुणिमा का सवाल सुनकर वो थोड़ी सी चौंक भी गई थी। पहले तो उन्होंने अरुणिमा के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने अरुणिमा के आंसू देखे तो उनका मन पिघल गया। वो अपने आंचल से अरुणिमा के आंसू साफ करते हुए कहती हैं, मत रो अरु, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है, शायद तुम वो सच सुन नहीं पाओगी। अरुणिमा सुबकती हुई कहती है, नहीं नानी, मैं हर सच सुनने के लिए तैयार हूँ, आप नहीं जानती हैं उस एक सच पर मेरी सारी ज़िंदगी टिकी हुई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बर्दाश्त किया है उसके बाद तो मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए नानी, क्या है माँ का सच? अरुणिमा की नानी एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, शारदा बचपन से ही बहुत ज़िद्दी लड़की रही है, अगर वो कुछ चाहती है तो उसे देना ही पड़ता है, क्योंकि वो मेरी और तुम्हारे नाना जी की इकलौती संतान थी, इसीलिए हम उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन तुम्हारे नाना जी एक स्वतंत्र ख्यालों के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने शारदा को कुछ भी करने से नहीं रोका था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो शारदा की हर मनमानी को अपनाते थे, क्योंकि समाज में उनका एक नाम था, एक रुतबा था, इसीलिए वो शारदा को एक दायरे में भी रखते थे, और शायद वही दायरा तुम्हारी माँ को बंदिश नजर आता था। 10वीं तक की पढ़ाई शारदा ने हमारे गांव में ही की है, 11वीं की पढ़ाई के लिए तुम्हारे नाना जी ने शारदा को शहर भेज दिया था,
उनका मानना था कि आज की पीढ़ी को समाज की सोच के साथ मिलकर चलना चाहिए, जो शायद गांव में रहकर संभव नहीं था। जब तुम्हारी माँ आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर गई, तब उसकी मुलाकात अभय नाम की एक लड़की से हुई और तुम्हारी माँ अभय को पसंद करने लगी। तुम्हारी माँ और अभय एक दूसरे के दोस्त बने और दोस्त से कब उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा, ये बात वो खुद भी नहीं जानते थे। 12वीं की परीक्षा देकर तुम्हारी माँ अभय को अपने साथ गांव ले आई और उन्हें मुझे और तुम्हारे नाना जी से मिलवाया, ये कहकर कि उसे अभय पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये उसकी शादी की उम्र नहीं है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। जहाँ लड़कियों को पढ़ाई के बाद तुरंत शादी के करा देते थे, वहाँ तुम्हारे नाना जी चाहते थे कि तुम्हारी माँ जिंदगी में एक मुकाम हासिल करे। पर अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे तुम्हारे नाना जी वहाँ पर भी हार गए थे, इसीलिए उन्होंने अभय के बैकग्राउंड के बारे में ढूंढने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि अभय कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो अक्सर लड़कियों को छेड़ने के मामले में पिटता आया है और यहाँ तक कि एक चोर है। अभय के आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसीलिए वो एक एनजीओ में रहता है और इस एनजीओ ने उसका दाखिला स्कूल में करवाया था ताकि वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन सके।